नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के लिए संसद का तीन दिन का विशेष सत्र कल से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, इस अधिनियम के माध्यम से नीति निर्माण के क्षेत्र में महिलाओं की सीधी भागीदारी सुनिश्चित होगी। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। परीक्षा में 93.70% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। राज्य सरकार ने खरीफ सीजन 2025 के लिए वितरित अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋणों के भुगतान की आखिरी तारीख 15 मई तक बढ़ाई और प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे हुए। कोटा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और चूरू सहित कई जगहों पर दिन का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। संसद का तीन दिन का विशेष सत्र कल से शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार इस दौरान महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करने के लिए जरूरी संवैधानिक संशोधनों को पारित करने का प्रयास करेगी। लोकसभा में कल और परसों महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। इस अधिनियम के प्रति जागरूकता के लिए आज जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से नीति निर्माण के क्षेत्र में महिलाओं की सीधी भागीदारी सुनिश्चित होगी। साथ ही संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने में महिलाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका है।
कि हमारी बहनें जब घर का संचालन अच्छी तरह से कर सकती हैं, तो हमारे देश का संचालन भी बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे। उनका उसमें सहभागिता हो और उस सहभागिता के साथ हमारा देश विकसित बने। विकसित भारत में आपका बहुत बड़ा योगदान हो। गांव से लेकर के देश तक के योगदान में हमारी महिलाओं की सहभागिता बने, इसके लिए इस अधिनियम को लेकर के आ रहे हैं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आई हैं, निश्चित रूप से मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सभी की सहभागिता उसमें बढ़ेगी, आगे हमारी बहनें नेतृत्व करें।
समारोह में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस अधिनियम से देश में बड़ा सामाजिक बदलाव आएगा। समारोह में अधिनियम के समर्थन के लिए एक मिस्ड कॉल नंबर जारी किया गया और हस्ताक्षर अभियान की शुरूआत की गई। मुख्यमंत्री ने आज ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छात्राओं के साथ संवाद किया। इस संवाद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संबंध में चर्चा की गई। कॉन्फ्रेंस से मेडिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल और डेटा साइंस के क्षेत्रों से जुड़ी छात्राएं जुड़ी। मुख्यमंत्री ने पचपदरा स्थित राजस्थान रिफाइनरी में कार्यरत महिला इंजीनियर्स से उनके अनुभव जाने। संवाद के बाद रिफाइनरी में काम कर रही इंजीनियर आंचल विश्वकर्मा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सरकार की मजबूत पहल बताया।
इसके लिए तो यही कह सकती हूँ, भारत तभी सफल होगा जब हमारी देश की नारियां सशक्त होंगी। तो ये तो बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत बड़ा कदम है, इसको सफल कर रही है सरकार, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि बालोतरा रिफाइनरी परियोजना राजस्थान के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। आज पाली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री राठौड़ ने कहा कि हर साल रिफाइनरी से राज्य को 8,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा और क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए कल से संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। श्री राठौड़ ने यह भी संभावना जताई कि जनसंख्या के आधार पर होने वाली आगामी परिसीमन के बाद राज्य में लोकसभा और विधानसभा की सीट्स भी बढ़ जाएंगी।
जनसंख्या के समान वितरण के आधार पर विधानसभाओं की संख्या बढ़ेगी, लोकसभाओं की भी लगभग 50% संख्या बढ़ने की संभावना है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, इसका हम स्वागत करते हैं कि जब सीटें बढ़ेगी राजस्थान में लगभग 38 लोकसभा हो जाएगी, राजस्थान में लगभग 304 विधानसभाएं हो जाएगी। बाकी तो कानून सामने आएगा 16-17-18 अप्रैल में क्लियर हो जाएगा। समान अवसर सबको भी मिलेगा विकास के लिए और मार्ग प्रशस्त होगा। बहनों की समस्याएं भी विधानसभाओं में और लोकसभा में में रखने का उनको भी अवसर मिले, निश्चित रूप से देश समृद्ध होगा, विकसित भारत बनेगा।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। बोर्ड ने बताया कि परीक्षा में 93.70% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ये पिछले वर्ष की तुलना में 0.04% अधिक है। इस वर्ष भी लड़कियों का नतीजा लड़कों से अच्छा रहा। छात्र अपने परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। आधिकारिक पोर्टलों के अलावा परिणाम डिजीलॉकर और उमंग ऐप जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी देखे जा सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए विकास के 9 क्षेत्रों में पूरी निष्ठा से योगदान देने का आग्रह किया है। आज कर्नाटक के मांड्या के पास आदि चुनचनगिरी मठ में गुरु भैरवक्य मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने जिन 9 क्षेत्रों में सहयोग करने का आह्वान किया है वे हैं जल संरक्षण और प्रबंधन, एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण और अपने आसपास धार्मिक स्थलों, गांव और शहरों को स्वच्छ रखना। प्रधानमंत्री ने रसायनों और कीटनाशकों का इस्तेमाल कम करते हुए जैविक और प्राकृतिक खेती की आवश्यकता पर बल दिया।
मेरा आग्रह किसानों से है कि वे केमिकल फ्री प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें। युवा पीढ़ी मिलेट्स को अपने भोजन में शामिल करें। हमारे देश में ओबेसिटी एक बड़ी चुनौती बन रही है। इससे निपटने के लिए भोजन में तेल की मात्रा 10% कम करने का भी प्रयास करें।
राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ सीजन 2025 के लिए वितरित अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋणों के भुगतान की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि अब किसान ये ऋण 15 मई तक चुका सकेंगे। पहले ये अवधि 31 मार्च निर्धारित थी। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 5,57,000 से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। सहकारिता मंत्री ने बताया की तिथि बढ़ाए जाने से किसानों पर बकाया करीब 2,184 करोड़ रुपए का ऋण अवधि पार यानी ओवरड्यू होने से बच जाएगा। श्री दक ने पात्र किसानों से बढ़ी हुई अवधि का लाभ उठाकर समय पर ऋण चुकता करने की अपील की है। राजस्थान पुलिस के 77वें स्थापना दिवस पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज जयपुर में पुलिस आयुक्तालय में आयोजित समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 6 पुलिसकर्मियों को कांस्टेबल ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने कहा कि इस सम्मान का उद्देश्य पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाना और उन्हें बेहतर काम के लिए प्रेरित करना है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जयपुर पुलिस आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय के ध्येय वाक्य के साथ काम कर रही है। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर कल जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। पुलिस अकादमी में होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में परेड की सलामी लेंगे। पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने बताया कि समारोह की शुरूआत शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि के साथ होगी। इस दौरान सेरेमोनियल परेड में 12 प्लाटून हिस्सा लेंगी और उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों तथा जागरूक नागरिकों को सम्मानित किया जाएगा। इस विशेष अवसर पर सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों की सुविधा के लिए एक नया पोर्टल और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान ने आज जयपुर में अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया। 15 अप्रैल 2005 को स्थापित ये कमान भारतीय सेना की 7वीं और सबसे युवा कमान है। जयपुर मिलिट्री स्टेशन में हुए समारोह में आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने जवानों को संबोधित किया। उन्होंने कमान के आदर्श वाक्य सर्वदा विजयी भव के अनुरूप पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा और सैन्य उत्कृष्टता के प्रति जवानों के समर्पण की सराहना की। और अब मौसम। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी के साथ गर्मी का असर बढ़ने लगा है। कोटा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और चूरू सहित कई जगहों पर दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बाड़मेर सबसे गर्म स्थान रहा। राज्य में सबसे कम तापमान सीकर में 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अगले 4-5 दिनों तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। इस दौरान तापमान में 2-3 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है। विभाग ने 17 और 18 अप्रैल को जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में लू चलने की चेतावनी दी है। आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने सौर ऊर्जा से बिजली बनाने और उसे जमा करने की तकनीक में एक बड़ी सफलता हासिल की है। भौतिकी विभाग के डॉ. शाहब अहमद और उनकी टीम ने ऐसी फोटो बैटरी तैयार की है जो सूरज की रोशनी से खुद ही चार्ज होती है और बिजली को अपने अंदर सहेज लेती है। फिलहाल सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए सोलर पैनल और अलग से भारी बैटरी की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस नई खोज के बाद एक ही उपकरण दोनों काम कर सकेगा। इससे फायदा यह होगा कि भविष्य में मोबाइल फोन, ड्रोन और इलेक्ट्रिक गाड़ियां काफी हल्की हो जाएंगी और उन्हें बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने ऐसी बैटरियां भी बनाई हैं जो मौजूदा बैटरियों के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली होंगी और लंबे समय तक चलेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने आज वाणिज्य विभाग के लिए नया एकीकृत डिजिटल मंच शुरू किया है। इसका उद्देश्य व्यापार संबंधी सेवाओं और सूचनाओं तक पहुंच को सुगम बनाना है। ये पहल ई गवर्नेंस को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल हितधारकों के लिए सेवाओं में सुधार के लिए सरकार के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। मंत्रालय ने कहा कि ये वेबसाइट निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितधारकों को व्यापार संबंधी संसाधनों और सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला तक कुशल और पारदर्शी पहुंच प्रदान करेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के लिए संसद का 3 दिन का विशेष सत्र कल से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, इस अधिनियम के माध्यम से नीति निर्माण के क्षेत्र में महिलाओं की सीधी भागीदारी सुनिश्चित होगी। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। परीक्षा में 93.70% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। राज्य सरकार ने खरीफ सीजन 2025 के लिए वितरित अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋणों के भुगतान की आखिरी तारीख 15 मई तक बढ़ाई और प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे हुए। कोटा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और चूरू सहित कई जगहों पर दिन का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।